पढ़ने लगे, जिसकी मैं कह सकती हूँ कि सबको ज़रूरत है। और वो क्या है कि अल्लाह के नबी के अखलाक और औसाफ़ कैसे थे। आइए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अर्रहीकु मख्तूम। इसके साथ हम देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद तो बिल्कुल किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती कि कोई इंसान ये कह सके कि हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी कैसे थे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि सीरत में चूँकि के वाक़ियाती रंग गालिब होता है, तो लोग उसमें से फिर अमल वाली चीज़ें कम नोट कर पाते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम आपसे मुतासिर होकर आप जैसे वो काम करें कि जिसके बाद हमें भी अल्लाह ताला से वही मिले जो कि आपको मिला। तो लिहाजा हम इसमें आज बिल्कुल इसके आखिर के टॉपिक को लेके चल रहे हैं, और अल्लाह के लिए बहुत ही बड़ी शुक्रगुजारी है दिल में कि उसने हमें इसको शुरू करके करने की तौफीक अता फरमाई। तो आइए देखते हैं, अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो बुक का पेज नंबर 644 है। अखलाक व औसाफ। थोड़ा सा मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सही करना है, क्योंकि उर्दू पढ़ते पढ़ते हमने उर्दू और अरबी को मिक्स कर दिया। इखलाक कहते हैं हमारे यहाँ लोग, इखलाक नहीं अखलाक। अफ़आल का वज़न होता है खुलुक से, अखलाक पुराना होना। कोई भी चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी यूज़ टू कर देती है बंदे को उस चीज़ का। तो अखलाक वो चीज़ होती है कि जिसमें इंसान को पोस नहीं देना पड़ता, बल्कि वो चीज़ इतनी उस बंदे के साथ चल चल के पुरानी हो चुकी है कि बिला तकल्लुफ, बिला मुबालगा वो वही काम करता है। मतलब यह है कि उसके लिए कोई आर्टिफिशियली इम्पोज करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमाले खल्क और कमाले खुल्क, फ़र्क क्या है? जमाल खूबसूरती ब्यूटी, खल्क की यानी आप की शक्ल बड़ी खूबसूरत थी, आपका चेहरा जिसको आप कुछ भी कह दीजिए, बहुत सारे अशआर आपके जहन में आ जाएंगे नातों में सुने हुए, वो सब ठीक है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ज़ाहरी हुस्न भी दिया था। और इसी तरह कमाले खुल्क, कमाल का भी अखलाक था, यानी अखलाक के कमाल पर थे। और कमाल कहते हैं कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर के दर्जे पे पहुंच जाए, यानी उसके बाद फिर पीछे और कुछ नहीं रहता, जो जो अहाते बयान से बाहर है, यानी जिसको हम अपने लफ्ज़ों में समेट नहीं सकते। इस जमालो कमाल का असर ये था कि दिल आपकी तज़ीम और कदलो मंजिलत के जज्बात से खुद ब खुद लबरेज़ हो जाते थे। चुनाचे आपकी हिफाजत और अजलालो तकरीम में लोगों ने ऐसी ऐसी फिदाकारी और जानिसारी का सबूत दिया जिसकी नज़ीर दुनिया की किसी और शख्सियत के सिलसिले में पेश नहीं की जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़का यानी रफ़ीक, दोस्त, कंपेनियंस और हम नशीन यानी साथ उठने बैठने वाले वह रफ्तगी की हद तक आपसे मोहब्बत करते थे। वह रफ्तगी क्या होती है? बेगान, जैसे बंदा बेहुद होता है, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उनको बहुत कंट्रोल था, मुरा ये कि बहुत ही प्यार करते थे। इन्हें गवारा न था कि आपको खराश तक आ जाए, ख्वाहिश के लिए इनकी गर्दनें ही क्यों ना काट दी जाएं। इस तरह की मोहब्बत की वजह यही थी कि आदतन जिन कमालात पर जान छिड़की जाती है, इन कमालात से जिस कदर हिस्से वाफिर आपको अता हुआ था किसी और इंसान को ना मिला। हम आजजी और बेमायगी के एतराफ़ के साथ इन रिवायात का खुलासा पेश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक आपके जमाल और कमाल से है। यानी अल्लाह के नबी के बारे में बात करना भी उतना ही इंसान के लिए मुश्किल है जैसे कि अल्लाह की ज़ात के बारे में इंसान बात करते हुए घबराता है। हालांकि फ़र्क तो बहुत बड़ा है, उसको तो देखा नहीं, उनको उस अल्लाह की हस्ती को तो कोई आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अल्लाह ने एक ऐसी कशिश थी डाली थी कि जो आपके पास आता खिंचता आता लेकिन आपकी तरफ नज़र भर के देख नहीं सकता। तो गोया कि हम पढ़ने लगे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी हुलिया मुबारक, यानी आपका खल्क और फिर इसके बाद आपका खुलुक पढ़ेंगे। खुलिए मुबारक कैसा था? यानी आपका हाल, आपके फीचर्स, आपकी फिजिक, आपका पोस्चर कैसा था? आप देखिए कि इसको पढ़ने से पहले ज़रा सा खुद को एहसास दिलाएं। आज हम कितनी मोहब्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल हुलिये की बात करते हैं ना, लेकिन आप देखिए कि सहाबा तो देखते थे। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को वो नेमत दे देता है जिसके लिए दूसरे तरसते हैं। अमूमन लोगों की कैफियत क्या होती है? ऐसी कैफियत और ऐसी नेमतों को अपने लिए बल्कि बोझ समझने लगते हैं, इसकी कदर नहीं करते, और हम बहुत कुछ मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन फिर जब मिल जाता है ना तो हम उसका हक नहीं अदा कर पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों के साथ जोड़ा था, और आपके साथ क्या खूबसूरत तरीके से ये चीज़ें लगी हुई थी, तो इसका अंदाज़ा तो आप मैं नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा की खुशकिस्मती पर रश्क ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपको कैसे इन सारी चीज़ों में बना के रखा, और आपका वो खूबसूरत सा हाल हुलिया कमाल तो अल्लाह ही का था, लेकिन दिया किसको, ये भी तो सोचने की बात है ना। तो अल्लाह अपने प्यारे नबी को कैसे बनाता है, आइए ज़रा थोड़ा सा इस सोच के साथ पढ़ें और दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह, दुनिया में तो हमारी आंखों ने नबी को नहीं देखा, लेकिन जन्नत में हमें महरूम ना करना, हमें उन लोगों में से करना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत महसूस कर सकें। जन्नत में अल्लाह सुबहाना ताला ने जो भी आपका मुकाम रखा है, अल्लाह ताला उसको अपने आपके साथ, मेरे साथ, अल्लाह ताला का जो मामला है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो जन्नत अल्लाह अपने नबी को देगा इंशाल्लाह, हमें भी जन्नत अगर मिलती है, और अल्लाह से उम्मीद है और लेनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह ताला जन्नत से कमतर किसी चीज़ पे मैं राज़ी नहीं होंगी, तो फिर दीदार ज़रूर करवाना, ऐसा ना हो कि हम दुनिया में भी पीछे रहे तो बात में भी हम पीछे ही रहें। एक खातून थी, उम्मे माबद उनका नाम था, कबीला खुजाया से थी, तो उन्हीं की रिवायत चलती आती है। देखिएगा ये शान भी अल्लाह ने एक औरत को दी। बहुत सारे लोगों ने नबी के चेहरे के बारे में बहुत कुछ किया, कहा, और बल्कि मुबालगा भी किया। याद रखिए कि नबी के शमाइल और आपका हाल हुलिया, इसको बताते हुए भी हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, वो कैफियत जो हदीस की कलेक्शन में या कुरान की आयतों में अगर वो ना भी को रख सके, लेकिन झूठ तो नहीं कह सकते ना। तो हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबत खुजाया के खेमे से गुज़रे, तो इसने आपकी रवानगी के बाद अपने शौहर से आपके हुलिया मुबारक का जो नक्शा खींचा वो ये था। क्या कहती हैं? चमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत साख्त, ना तोंदलेपन का ऐप, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं था, जिसको तोंद निकला हुआ कहते हैं हम लोग, पेट का निकलना बाहर, ना गंजेपन की खामी, यानी ऐसा भी नहीं था कि सर पे से बाल उतरे हों, बाल ना हों, जमाल जहां ताब के साथ ढला हुआ पैकर, यानी जिस्म ऐसा था कि जिसमें खूबसूरती, आप देखिए बहुत लंबा कद भी अच्छा नहीं होता और बहुत छोटा भी अच्छा नहीं होता, बहुत दुबला पतला बंदा भी अच्छा नहीं लगता और बहुत मोटा भी अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा ही खूबसूरत सा अंदाज, यानी जमाल जहाँ ताब के साथ, यानी जिसकी कोई ताब ला सके, ये कह लीजिए सुरमगी आँखें, यानी कुदरती तौर पे आपकी आँखों के अंदर ऐसे लगता था सुरमा लगा हुआ है, लंबी पलकें, भारी आवाज़, लंबी गर्दन, सफ़ेदो स्याह आँखें, स्याह सुरमगी पलकें, बारीक और बाहम मिले हुए अबरू, आईब्रोज, चमकदार काले बाल, खामोश हों तो बावक्कार, गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, दूर से देखने में सबसे ताबनाक और पुरजमाल, करीब से सबसे खूबसूरत और शीरी, गुफ्तगू में चाशनी, बात वाज़ेह और दो टोक, ना मुख्तसिर ना फजूल, अंदाज ऐसा कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, दरमियाना कद, ना नाटा के निगाह ना निगाह में ना जचे, ना लंबा के ना गवार लगे। दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह हैं जो सबसे ज़्यादा ताज़ा और खुश मंज़र है। रुफ़का यानी साथी आपके गिर्द हलका बनाए हुए कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाते हैं। मुता यानी वो शख्स जिसकी इताअत की जाए, लोग उनकी बातें भी माने। मुकर्रम जिसका कराम किया जाए, इज्जत की जाए। ना तुरशरू यानी ऐसी बातें नहीं करते जिसको खट्टी बातें कहे, खरी खरी नहीं सुनाते थे, चेहरे पे ना गुबारी नहीं थी। ना लख गु और ना लख बातें करते थे। आप ज़रा सा ये तो अरबी में, उर्दू में पढ़ा ना आपने, कभी इनका अरबी में तो पढ़ कर देखिए। और मैं सोचती हूँ, बल्कि इस पे बहुत बात करते हैं उलमाए कराम भी, कि अरब की आम औरत भी अदब के आला मुकाम पे थी। यानी ये अरबी में पूरा मिलता है, आप खोल कर देखिए, आपको पूरा एक एक लफ्ज़, ये उसी का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा। और मैं इसको पढ़ते हुए महसूस कर रही थी कि क्या खूबसूरत पैकर होगा, और जब हम जन्नत में अपने प्यारे नबी को देखेंगे तो हमारे दिल की क्या कैफियत होगी। याद रखिए कि जितना मर्जी इंसान बाखलाक हो, बाकिरदार हो, हमें से प्यारा, लेकिन ज़ाहरी फिजीक, ज़ाहरी हाल उलिया ट्रैक करता है, मानिए ना मानिए। बच्चे से माँ को प्यार तो है ही है, लेकिन बच्चे का हुसन, बच्चे का महज़ब दिखना, बच्चे का ज़ाहरी हाल उलिया चौ, इससे माँ का दिल और खिलता है। सेम यही हर रिश्ते में, शोहर बीवी का रिश्ता चाहे वो अंतुम लिबासुल्लाहुन का रिश्ता है, लेकिन ज़ाहिर का फ़र्क तो पड़ता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये हिस रखी है, परिंदों और जानवरों में तो ये हिस नहीं है। तो अल्लाह के नबी जब किसी महफिल में बैठे होते होंगे तो क्या खूबसूरत मंज़र होता होगा। आप देखिए कि इसे एक छोटी सी बात नोट कीजिए कि दीन के साथ अगर आपका अल्लाह ने नाम जोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बेहंगम लगें। शक्लें तो हम सबकी अच्छी हैं, कौन कहता है उसकी शक्ल नहीं अच्छी, लेकिन हमें अपना हाल हुलिया, हमें अपना गेटअप, हमें अपना ज़ाहरी मामला भी खूबसूरत रखना चाहिए, ताकि दीन को भी तो लोग इज्जत से देखें। आज दुनियावी तौर पे लोग कितने टिशन मिशन रहते हैं, तो दीन के नाम पे हम केयरलेस। हाँ, हमारे ऊपर हवाइयाँ उड़ रही हों, हम केयरलेस लगे, अगली लगे, ये तो दीन नहीं है। और अभी आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी क्या खूबसूरत एहतमाम करते थे हर चीज़ में अपने आप को अपडेटेड रखने का। तो ये तो थी एक खातून की नज़र, आइए ज़रा एक मर्द की नज़र से सुनते हैं अल्लाह के नबी ने क्या, अल्लाह के नबी कैसे थे। और बयान करने वाले कोई और नहीं, कोई बाहर के नहीं, घर का बंदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आपका वसफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, आप ना लंबे तड़ंगे थे, ना नाटे खोटे यानी ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, लोगों के हिसाब से दरमियाने कद के थे। बाल ना ज़्यादा घुंघरियाले थे, कर्ली, ना बिल्कुल खड़े खड़े, बल्कि दोनों के बीच बीच की कैफियत थी। रुखसार ना बहुत ज़्यादा पुरगोश था यानी चिकी चिकी, बहुत मोटा मोटा गोल मटोल मुंह भी नहीं था, ना ठोड़ी छोटी और पेशानी पस्त। चेहरा किसी कदर गोलाई लिए हुए था यानी ऑलमोस्ट राउंड फेस था आपका। रंग गोरा, गुलाबी आंखें, सुर्खी माइल पलके, आंखें सुर्खी माइल, पलके लंबी, जोड़ों और मोंढ़ों की हड्डियां बड़ी बड़ी यानी चौड़ा सीना था आपका। सीने पर नाफ तक बालों की हल्की सी लकीर, बकिया जिस्म बाल से खाली, हाथ और पाँव की उंगलियां पुरगोश्त यानी गुदले गुदले हाथ कह लीजिए, हाथ और पाँव की, चलते तो कदरे झटके से पाँव उठाते, और यूं चलते गोया किसी ढलवान पर चल रहे हो। अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा करके देखे ना तो खुल जाता है, यानी कंधे पिचके हुए नहीं थे, स्ट्रेट शोल्डर्स, लेकिन सीना बाहर निकला हुआ। जब किसी तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे वजूद के साथ मुतवज्जे होते। ये क्या मतलब है? यानी आप रिवॉल्विंग चेयर पे किसी को तस्वर में लाएं, कोई आवाज़ दे तो वो सिर्फ मुंह खूम घुमा दे या पूरी कुर्सी घुमा के उधर जाए, तो तो अल्लाह के नबी सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा जिस्म घुमाकर उसके बिल्कुल सामने मुकर के फिर बात करते थे। और हर सुनने वाले और हर बात करने वाले को यही अच्छा लगता है कि जिससे मैं बात करूं वो पूरी तवज्जो दे, यानी आप लोगों को तवज्जो देते थे, अहमियत देते थे। दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, ये ख़ास चीज़ थी जो अल्लाह ने आपके बैक साइड पे दोनों शोल्डर्स के बिटवीन में रखी हुई थी। आप सारे अम्बिया के खातिम थे। खातिम कौन होता है? मोहरबंद, यानी आखिरी नबी थे। एक होती है सील और एक होती है स्टैम्प, यहाँ मुराद सील है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा सखी दस्त और सबसे बढ़कर जुरतमंद, जिसको आप कह सकते हैं कि रिस्क टेकर थे। सबसे ज़्यादा सादिकुल लहजा, लहजा बड़ा सच्चा था। और ये कौन सा लहजा होता है? लहजा समझे ना, एक्सेंट, बात करना, यकीन, सच्ची बात करते थे। और सबसे बढ़कर अहदो पैमान के पाबंदे वफा। सबसे ज़्यादा नरम तबीयत और सबसे शरीफ साथी, जो आपको अचानक देखता हैबत ज़दा हो जाता, यानी अचानक देखने से मेरा ये कि कभी कभार या दूर से देखता तो घबरा जाता, जो जान पहचान के साथ मिलता महबूब रखता, यानी जितना कोई आपके करीब होता उतनी आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगता। आपका वसफ़ बयान करने वाला यही कह सकता है कि मैंने आपसे पहले और आपके बाद आप जैसा नहीं देखा। है किसी माँ का बच्चा ऐसा आज के जिसमें ये सारी खूबियां हों? आप देखिए कि इससे पता चलता है कि अल्लाह ने जैसे आसमान खूबसूरत बनाया ना, आप आसमान को देखते ना, आप कहते हैं बस ऐसे ही होना चाहिए था। सूरज, चांद, सितारे, बहार, खिजां, समंदर, कायनात की एक एक चीज़ जो अल्लाह का मास्टरपीस है, उसको आप देखते हैं ना तो आपके दिल में आता है एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। हल तरा मिन फुतूर, अल्लाह कहते नहीं, एक बार नहीं, दो बार निगाह झुका लो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पूरे आसमान में कहीं शगाफ नहीं है। इसी तरह नबी, अल्लाह के भेजे हुए रसूल में भी कोई झोल नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत में भी कोई झोल नहीं है। जैसे कुरान एवर न्यू है ना, ऐसी कायनात एवर न्यू है। तो नबी के अंदर वसफ इतने जमा करने से मुराद क्या है, आप ज़रा इस पे समझिएगा। दीन की इज्जत, जब आप दीन का तारुफ बन जाते हैं ना, तो आपका हर अमल लोगों को या तो दीन के करीब करता है या दीन के दूर करता है। अगर नबी के अंदर कोई झोल हो, कोई ढीलापन हो, कोई कमी हो ना, तो ये दीन के नाम पे जाता है। इससे पता चलता है कि जब आपकी पहचान दीन हो जाए तो हत्तुल बसा हर चीज़ तो इंसान के बस में भी नहीं है, लेकिन वट एवर पॉसिबल वी कैन डू इट, वी शुड डू इट। दीन को हमेशा बाइज्जत बनाएं और एक दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी वजह से दीन की इज्जत हो और दीन की वजह से मेरी इज्जत हो, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत बने। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की एक रिवायत में है कि आपका सर बड़ा था। हमारे पंजाबी ज़बान में क्या कहते हैं, वड्डे सिर सरदारा दे, जिसको नहीं पता वो पूछ ले। जोड़ों की हड्डियाँ भारी भारी थीं, जोड़ क्या होते हैं, जॉइंट्स। सीने पर बालों की लंबी लकीर थी, जब आप चलते तो कदरे झुक कर चलते, गोया किसी डहलवान से उतरे हैं। हज़रत जाबिर बिन समूरा का बयान है कि आपका धाना, धाना क्या होता है, माउथ, यानी जैसे होंठों की चौड़ाई कह लें, आपका धाना कुशादा था, वाइट था, आंखें हल्की सुर्खी लिए हुए और एड़ियां बारीक। अबू तुफैल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप गोरे रंग, पुर मुलाहत चेहरे, मुलाहत क्या होती है आपको पता है, नमक, नमकीन, यानी अट्रैक्शन। कभी गोरे होते हैं लोग फिर भी कशिश नहीं होती, फीके लगते हैं, और कई कालों के और स्याह पे और गंदमियों पे भी बड़ी कशिश है, तो नमकियत थी आपके चेहरे पे। और म्याना कदो कामत के थे, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि आपकी हथेलियाँ कुशादा थीं और रंग चमकदार, ना खालिस सफ़ैद ना गंदम गू, यानी वीटिश। वफात के वक्त तक सर और चेहरे के 20 बाल भी सफ़ैद ना हुए थे। कितनी उम्र थी आपकी माशाल्लाह? 63। और सर के और चेहरे के बाल में सर और दाढ़ी सिर्फ 20 बाल टोटल दोनों के मिला ले, 10 सर के 10 चेहरे के, सफेद नहीं थे, सब काले थे। सिर्फ कनपट्टी के बालों में कुछ सफेदी थी, कनपट्टी के कानों से आगे की जगह, और चंद बाल सर के सफेद थे। आज तो मेरे वाले 30-35 के बाद ही बाल वाइट होने लग जाते हैं। हज़रत अबू जो हैफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आपके होंठ के नीचे अनफका आइन नून फाका दाढ़ी बच्चा में सफेदी देखी। ये क्या होती है? अगर आप देखें तो मर्दों की चिन और होंठों के बीच में एक छोटी सी जगह पे बाल होते हैं ना, बिल्कुल मिडल में, उसको अनफका कहते हैं। जो पूरी गर्दन होती है ना नीचे, उसको उनक कहते हैं। ये उनक के बीच में फा लगा लीजिए। आप देखिए कि सहाबा कैसे नबी सल्लम को वो देखते थे, और ये सामने से नहीं देखते थे, साइड से देखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर का बयान है कि आपके अनफका यानी दाढ़ी बच्चे में चंद बाल सफ़ेद थे। हज़रत बरा का बयान है कि आपका पैकर दरमियानी था, दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी, बाल दोनों कानों की लो तक पहुंचे हुए थे, यानी लंबे बाल थे पीछे से आपके। मैंने आपको सुर्ख जोड़ा जेब तन किए हुए देखा, कभी कोई चीज़ आपसे ज़्यादा खूबसूरत ना देखी। आप देखिए इतना गोरा चिट्टा काले बालों वाला शख्स हो और कपड़े भी फिर सुर्ख रंग के पहने हो, तो क्या हुसन नहीं होगा उसमें? पहले आप अहले किताब की मुवाफ़क़त पसंद करते थे, इसलिए बाल में कंघी करते तो मांग ना निकालते, लेकिन बाद में मांग निकाला करते थे। जी, आपने बाल बनाने में भी अहले किताब की सिमुलेशन को कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया। मक्का में अगर था तो मदीना में आके छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ ज्यूस का ये अमल था। हज़रत बरा कहते हैं कि आपका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और आपके अखलाक सबसे बेहतर थे। इनसे पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार जैसा था, यानी लंबा पतला? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि चांद जैसा था, और एक रिवायत में कि आपका चेहरा गोल था। रबी बिनते मुआविज़ कहती हैं कि अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो लगता कि तुमने तुलू होते हुए सूरज को देखा है। कैसा लगता है, सनराइज? हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मैंने एक बार चांदनी रात में आपको देखा, आप पर सुर्ख जोड़ा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और चांद को देखता, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आप चांद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। और याद रखिए, ये मुबालगा नहीं था, ये हकीकत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। लगता था सूरज आपके चेहरे में रवान दवा है, यानी शाइनी फेस था। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को तेज़ रफ्तार नहीं देखा। तेज़ चलते थे आप, और अक्सर मर्द तेज़ ही चलते हैं। लगता था ज़मीन आपके लिए लपेटी जा रही है, हम तो अपने आप को थका मारते थे, और आप बिल्कुल बेफिक्र। इसको हाईलाइट कीजिए, बड़ी अहम बात है। हमारे जहन में आता है कि इंसान जितना मसरूफ हो जाए और जितना मशहूर हो जाए और जितने ज़्यादा उसके कंधों पे जिम्मेदारियां डल जाएं, वो उतना ही थका थका घबराया मसरूफ, वक्त नहीं है, बात नहीं करनी, खाना नहीं खाना, किसी को मिलना नहीं, क्योंकि मसरूफ़ बहुत है और फिक्रें। ज़ाहिर है कि ये तो सीधी सीधी सी बात है कि आपके पास जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उतने आपको मसले तो ज़्यादा ही होंगे। और हर बच्चे का एक प्रोजेक्ट बनाइए, जिसकी 6 बेटियां हैं तो ज़रूर किसी एक बेटी के घर में कुछ हो ही रहा होगा, कहीं खुशी कहीं गम, कभी सेहत कभी बीमारी। और जिनकी है ही एक, तो बस एक या गम में या खुशी है ना। लेकिन मोमिन बेफिक्र, जो होगा देखिए, 6 बेटियां के 10 बेटियां भी हैं, जो होगा देखी जाएगी। हाँ, इनके रिश्ते कैसे होंगे, जिधर अल्लाह ने करने हैं कर देगा। तो अपने अंदर ये बेनियाजी डालिए, बेफिक्रे रहे। जब आपसे कोई मिले उसको लगे आपसे ज़्यादा बेफिक्र ही कोई नहीं, आपसे ज़्यादा फारिगी कोई नहीं, आपसे ज़्यादा रिलैक्स ही कोई नहीं, आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आप तो बहुत ही चिल मूड में रहते हैं। और आपको पता है कि ये कैफियत कब आती है? जब आप अपने सारे मामले उस हस्ती के हाथ में दे देते हैं जिसको चीजें सौंपने के बाद जाया नहीं होती। ला तो दियु वदाया, जब सफर पे जाते हैं और आप फिर जो जाता है या जो जिसको भेजा जाता है क्या कहते हैं, इस तो दे अल्लाह हल्लजी ला तदियु वदायुहु, मैं अपना सब कुछ उसके हवाले करता हूँ जिसको सौंप कर चीज़ें ज़ाया नहीं होती। और कौन बेफिक्र रहता है जो कहता है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ए अल्लाह पकड़ सारे कामों के पटारे। कभी कहता है हसबुनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह तू ही मुझे काफ़ी है। और कभी कहता है रदी तो बिल्लाहि रब्बन। याद रखिए ये फिक्रमंदी और बेफिक्री का डायरेक्ट ताल्लुक ईमान से है। जब आप अल्लाह को सब कुछ समझते हैं ना तो आप बेफिक्र होते हैं, और अगर आप अल्लाह को काफ़ी कुछ समझने के साथ कुछ खुद को भी समझते हैं ना तो सारा कुछ होने के बावजूद गम फिक्र बड़े होते हैं आपको। हज़रत काब बिन मालिक का बयान है कि जब आप खुश होते तो चेहरा दमक उठता गोया चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा, इससे पता चलता है कि बंदा अगर खुश हो ना तो उसकी आंखें भी चमकें और एक बच्चों वाला एक मासूम सा हुसन चेहरे पे दिखना चाहिए, रिलैक्स्ड। एक बार आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे, पसीना आया तो चेहरे की धारियां चमक उठी। धारियां क्या होती हैं? अमूमन पसीना एक ख़ास रो में गिरता है ना, जैसे कितार दर कितार वाली कैफियत। ये कैफियत देकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू कबीर हज़ली का ये शेर पढ़ा। अरब का बड़ा ही मारूफ और मशहूर शायर था। तो शेर क्या था? कहती हैं कि वाइज़ा नज़र तु इला अस्सर्रति वजहु बिरक़ति बिबरक़िल आरदिल मुतहल्लल, जब आप जब इनके चेहरे की धारियां देखो तो वो यूं चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा हो। ये तो थी सिद्दीका। आप ज़रा सिद्दीक का शेर भी सुन लीजिए। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहते हैं? कहते थे कि अमीन उन मुस्तफ़ा बिल खैरी यदऊ कदुल कदउल बद्री ज़ा इलहिल ज़ल्लाम, आप अमीन हैं चुनीदा यानी चोजन मुस्तफ़ा बरगजीदा हैं बिल खैरी यदु खैर की दावत देते हैं कदउल बद्री जैसे चौदहवीं के चांद की रोशनी कामिल चांद है ज़ाइलहु ज़ल्लाम जिससे तारीकी आँख मिचोली खेल रही है। यानी कभी चौदहवीं का चांद बादलों में छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, बादल हटते हैं तो ऐसे रोशनी होती है ना। इस कैफियत को अल्लाह के नबी से जोड़ा। और हज़रत उमर का भी शेर सुन लीजिए जो हरम बिन सनान के बारे में कहा गया था। यानी हज़रत उमर जुहैर का एक शेर पढ़ते थे, ये भी शायर वही जिसका ऊपर जिक्र हुआ है। तो जुहैर का एक शेर हरम बिन सनान के बारे में था, लेकिन हज़रत उमर इसको अल्लाह के नबी के लिए कहते थे लव कुंत मिन शैयन सवीयुल बशर, अगर आप बशर के सिवा किसी और चीज़ से होते तो आप ही चौदहवीं की रात को रोशन करते। कुंत अलमुदिया लैलतिल बद्री, यानी आप इंसान ना होते तो फिर चौदहवीं का चांद जो था ना वो आप होते। फिर फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे, जब आप गज़बनाक होते तो चेहरा सुर्ख हो जाता, दोनों रुखसारों में दाने इनार निचोड़ दिया गया है। क्या कहते हैं इनार को? रुमान। अनार की तरह कितना सुर्ख होता है अनार। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबर बिन समूरा का बयान है कि आपकी पिंडलियाँ कदरे पतली थी। पिंडलियाँ क्या होती हैं? हाँ, पाँव से घुटना होता है टखना, पाँव से घुटने तक क्या कहते हैं टखना, ये मुझे हमेशा गड़बड़ लगता है। घुटने में दर्द क्या होता है और टखना क्या होता है, यानी आपकी नीज कह लीजिए, इसको देख लीजिएगा, यानी टांग का नीचे का हिस्सा। कदरे पतली थी और आप हंसते तो सिर्फ तबस्सुम फरमाते। आंखें सुरमगीन थीं, तुम देखते तो कहते कि आपने आंखों में सुरमा लगा रखा है, हालांकि सुरमा न लगा होता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि आपके गिर्द के आपके आगे के दोनों दांत अलग अलग थे, यानी उनमें गैप था। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो इन दांतों के दरमियान से नूर जैसा निकलता दिखाई देता। आज भी आप देखिए कि अक्सर लोगों के सामने के जो दो दांत हैं ना, वो खुले होते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसके दांतों में गैप होता है ना, वो बड़े खुले दिल वाला होता है। ऐसी बातें हैं बनी हुई, आई थिंक सो, कि वो बड़ा खुले दिल का बंदा होता है। इस तरह कभी कहते हैं हाथ सीधा करो, कर लें जी, तो आपकी उंगलियों के बीच में गैप हो ना, तो कहते हैं खुले हाथ वाला है, बड़ा खुला दिल है इसका। और इसी तरह ऑपोजिट भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी की जो बातें थी वो तो जो थी सो थी। गर्दन कैसी थी? गर्दन गोया चांदी की सफाई लिए हुए गुड़िया की गर्दन थी। पलकें तवील, दाढ़ी घनी, पेशानी कुशादा, अब्रू पेवस्ता जुड़े हुए और एक दूसरे से अलग, नाक ऊंची, रुखसार हल्के, लब्बे से लब्बा से नाफ तक छड़ी की तरह दौड़ा हुआ बाल, यानी ये लब्बा कह लीजिए जैसे जहाँ लंग्स हैं, यानी अपर बॉटम कह लीजिए, और नाफ तो पेट तक आपको पता ही ये जगह होती है। और इसके सिवा शिकम और सीने पर कहीं बाल नहीं, अलबत्ता बाजू और मोंढों शोल्डर्स पर बाल थे। शिकम और सीना बराबर, सीना मुसत्तह, हाँ बराबर चौड़ा, जैसे सतह का लफ्ज़ है ना, मुसत्तह, और कुशादा यानी वाइड था आपका चेस्ट। कलाइयाँ बड़ी बड़ी, हथेलियाँ कुशादा, कद खड़ा, तलवे खाली, यानी ये जो पाँव के तलवे होते हैं ना, ये खाली था, गैप था नीचे। आज़ा बड़े बड़े, जब चलते तो झटके के साथ चलते, कदरे झुकाव के साथ आगे बढ़ते और सहल रफ्तार से चलते, यानी सहल रफ्तार मीन इजी गोइंग, आराम से, इतना के मतलब अच्छी रफ्तार होती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कोई हरीर और दीबा रेशम सिल्क ऐसा नहीं छुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम हो, और न कभी कोई अंबर या मुश्क या कोई ऐसी खुशबू सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बेहतर हो। हज़रत अबू जुहैफा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आपका हाथ अपने चेहरे पर रखा तो वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। हज़रत जाबिर बिन समूरा जो बच्चे थे, कहते हैं आपने मेरे रुखसार पर हाथ फेरा तो मैंने आपके हाथ में ऐसी ठंडक और ऐसी खुशबू महसूस की गोया आपने इसे इत्तार की इतरदान से निकाला। इतार किसको कहते हैं? इतर बेचने वाले को, यानी खुशबू थी आप में। हज़रत अनस का बयान है कि आपका पसीना गोया के मोती होता था, और उम्मे सुलैम कहती हैं कि ये पसीना ही सबसे उम्दा खुशबू हुआ करती थी। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप किसी रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और आपके बाद कोई और गुज़रता तो आपके जिस्म या पसीने की खुशबू की वजह से जान लेता कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं, यानी आपके पास नेचुरल फ्रेग्रेंस थी। आज भी जो लोग बहुत इत्र या परफ्यूम लगाते हैं ना, तो जब वो किसी जगह से गुज़र जाते हैं तो उसके बाद वो खुशबू मौजूद रहती है ना, तो अल्लाह के नबी को कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये खुशबू का तोहफ़ा दिया था कि आपको अल्लाह ताला इस तरीके से लोगों के लिए एक खुशगवार किस्म की हस्ती बना के पेश करता था। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नबी सल्लम के अपने इख्तियार में नहीं थी, आपके मेरे भी इख्तियार में कुछ नहीं है ना, लेकिन जब भी कोई बात आप और मैं पढ़ते हैं नबी की, तो बस उसको आप इस एंगल से पढ़ा करें और सुना करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी तरफ से एक ख़ास किरदार दिया, अच्छे से अच्छा, खूबसूरत और खूबसूरत से खूबसूरत तर। ऐसा आपका अंदाज़ था कि जिसमें से दूसरे लोग ज़रूर मुतासिर होते थे। आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, जो कबूतर के अंडे जैसी और जिसमें मुबारक ही के मुशाबे थी। ये बाएं कंधे की कर्री यानी नरम हड्डी के पास थी। अगर आप शोल्डर्स को इधर गर्दन के नीचे हाथ लगाएं ना, तो एक सॉफ्ट कुरकुरी सी हड्डी होती है, इस जगह पे थी ये। इस पर मस्सों की तरह तिलों का झमघट था, यानी अल्लाह ने आपको ये एक साइन दिया था। और कुछ अहले किताब जो पिछली किताबों में अल्लाह के नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक पढ़ चुके थे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी को फिर इन्हीं निशानियों से पहचाना था। अब आपके ये सारा सुनने से क्या महसूस हुआ? जाहिरी बात है कि मोहब्बत दो चंद हो गई। मिलने को दिल कर रहा है, आपको देखने को दिल करता है, और आप देखिए कि दुनिया में अल्लाह की इस कायनात में इतनी खूबसूरत जगह है ना। आप सुनते हैं तो आपका दिल करता है मैं देखूं, मसलन नियाग्रा फॉल। जिसने नहीं देखी ज़रूर वो सुन सुन के चाहेगा कि मैं भी देखूं ना। इसी तरह अगर किसी इंसान की खूबी और खूबसूरती का तذکرہ हो तो दिल करता है ना उसको भी देखने को। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आज इसके इस पढ़ने और इसके बारे में बात करने को कबूल कर ले, और हमें नबी के दीदार से महरूम ना करना। ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाकर भी आपको ना मिलें। और वो सारी हदीसें जहन में ले आइए कि सारे ही जन्नत में दाखिल होंगे मगर वो जिसने खुद इनकार किया, मन असा। तो साहबा ने कहा कौन है ऐसा जो खुद ना जाए जन्नत में, वो कौन है जो इनकार करे? तो फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को पीछे किया, जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने इनकार किया खुद जन्नत में जाने से। और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके मेरे लिए गौर तलब है, और आपको मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ते और सुनते वक्त आप और मैं अगर इस चीज़ को अपने अमल में लाना चाहते हैं, क्योंकि बातें तो हमने पढ़ ली हैं, मोहब्बत तो दो चंद हो ही रही है इससे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पढ़कर अपना एक मेयार भी तो बनाइए ना। क्या खूबसूरत किरदार था। थोड़ा सा इस पे शेयरिंग कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई बात इसको सुनने के बाद आपके जहन में आ रही है तो उसको लीजिए, और फिर अपने लिए अमल की बातों में ये भी लीजिए कि हम तो ख्वातीन है ना, हम अपनी खूबसूरती को जाहिर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम साफ़ सुथरे तो रह सकते हैं ना। अपने घर वालों के लिए हम एक खुशी का सामान तो बन सकते हैं ना। और इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हर चीज़ सिर्फ शक्लो सूरत की नहीं है, पर्सनैलिटी की। तो अपनी पर्सनैलिटी को देखना है। कभी मैं दीन के लिए जाऊँ तो लोग मुझे देखकर क्या सोचते होंगे? छिछोरपन, ऊंची ऊंची बोलना, क्योंकि आपने देखा कि इसमें आपकी कुछ आदत भी थी, चलना फिरना बोलना। और जो पर्सनैलिटी होती है ना, इन सब चीज़ों से मिलके बनती है। पर्सनैलिटी के लिए वो जैसे बच्चों का पज़ल होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ें तो फिर पूरा होता है। तो इन चीज़ों को सामने रखिए कि मैंने अपने चलने, अपने बात करने, अपने खाने, अपने लेटने बैठने से दिखाना है कि मैं नबी की उम्मती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में से पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उसको वन बाय वन अपने लिए चेक कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए। क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मेरे में ये है? क्या मैं ऐसे चलती हूँ? क्या है? बस एक एक करके उसके ऊपर काम कीजिए। हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं। लोग आज मॉडल्स को फॉलो करते हैं। हम किसी के साथ जो भी कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि बस अब वो दुनिया में जो मशहूर है, कभी फेसेस बनाते हैं, कभी माथे पे तेवरियां चढ़ाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। यानी ये हमारी एक आदत है, हम इसके ऊपर मजबूर हैं शायद। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इससे एक और चीज़ भी आपके मेरे का गौर की है, और वो क्या है कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं। और फिर इसमें जो चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं मिलती फितरी तौर पे भी, तो आपने उसको इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से, जिस हद से, जिस तरह बेहतर कर सके उसको करना है। है जी नवीद आमिर, आप माइक लीजिए और फिर दूसरे भी ले सकते हैं बारी बारी।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला।
अलहमदिल्ला। बहुत बड़ी खुशकिस्मती, इतनी खूबसूरत बातें सुनने को मिली अपने प्यारे नबी के बारे में, अलहमदिल्ला। और हम सबको ये ख्वाहिश और तमन्ना रखनी चाहिए कि हम भी उस तरह की अखलाक अतवार और औसाफ अपना सकें। और आपने जो बात कही कि जब दीन की इज्जत बन जाए तो आपका हर अमल दूसरों को दीन से दूर या करीब करता है, ये बहुत सोचने की बात है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है कि हम ऐसे नुमाइंदा बने दीन के लोग खींचे चले आए, अपने होंठों पे मुस्कुराहट रखें, स्माइल रखें, जो हमारे नबी का एक खासा थी और सुन्नत है, तो मीठी जुबान रखें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि बयान से बाहर है। मैंने अपने अमल के लिए बहुत चीजें की है, बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद जी, हमेशा हमेशा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जज़ाकल्लाह
अलहमदिल्ला,
खैर।
जजाकला खैर जी। नेक्स्ट प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक, और इतना आपने खूबसूरती से जैसे बयान किया और इतना अच्छा स्केच आ रहा है जहन में, लेकिन फिर भी जो है ना, मुझे लगता है कि हम वो तस्वीर कभी भी बना ही नहीं सकते अपने जहन में। मेरे ख्याल से तो वो जस्टिस कर ही नहीं सकते कि क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हसीन होगा कि जिस मतलब हम वो तस्वुर में ला भी नहीं सकते, बेशक जितना मर्जी पढ़ लें। ये मेरी अपनी फीलिंग है लाइक। तो माशाल्लाह से जैसे आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, नबी पाक सल्लम की सीरत पढ़ने का सही मायनों में अब ही मौका मिला है। और जैसा आपने बताया कि हमारा इखलाक ही दूसरों के लिए और हमारा हाल हुलिया वो दूसरों को दीन से करीब भी कर सकता है और दूर भी कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को बात करनी कुछ होती है, कर कुछ देते हैं, या फिर हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे मिलते हैं या खुद के मतलब हम एक बहुत कॉमन है ये वर्ड के, अच्छा उसके दिल में कुछ नहीं है पर जरा जबान की कड़वी है। तो मुझे लगता है कि मतलब आपके दिल में नहीं हो कुछ तो फिर जबान पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम ना चाहते हुए भी दिल में कुछ भी नहीं होगा लेकिन अपनी जबान से दूसरों को बहुत तकलीफ पहुंचा देते हैं। और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कोई किस टाइम पे किस तरह से फील कर रहा है, और आपको अगर वो कोई ऐसा अपना एक्शन दिखा रहा है तो लाजमी नहीं है कि उसके लिए आपके लिए कोई बैड फीलिंग हो, मे बी उसके माइंड में बैक पे कितना कुछ हो। तो थोड़ा सा मैं उससे थोड़ा इजी ऐसे करूं कि हम लोग समटाइम हमारी अपनी ऐसी होती हैं चीजें माइंड में चल रही होती हैं दूसरों से लेकर के, अगर दूसरा पॉजिटिव भी हो तो हमारे अपने ख्यालात इस तरह नेगेटिव बने होते हैं दूसरों को लेकर के, हम उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते जब जबकि वो नेगेटिव नहीं भी होते। तो बहुत सारी चीजों पर डेफिनेटली काम करने की जरूरत है, और अगर हमारा हुलिया अच्छा है तो हमें अपना इखलाक भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। सिर्फ जाहिरी अपना दीनदार हाल हुलिया बनाकर तो हम ये नहीं शो कर सकते कि हम बहुत दीनदार हैं। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी ऐसे हुलिये से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, हमने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जितना जो जिसका हुलिया बहुत दीनदार से मिलता है तो मे बी के शायद वही बहुत मतलब दीन के आला मकाम हासिल किए हुए लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें अभी लर्न करनी है आहिस्ता आहिस्ता। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला जी। और कुछ शेयर करना चाहते हैं कुछ?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला।
आज जब आप सल्लम का हुलिया पड़े तो जिम में जाने का और ज्यादा शौक हो रहा है कि मतलब जल्दी से जाए और जाके देखें बस अल्लाह ताला हमें पहुंचा दे। तो इसमें तो और ज्यादा चाहत होती है कि जन्नत में पहुंच के आपसे सलम से जरूर मिले, वसल्लम को हम भी अपनी आंखों से देख सके, जो सिस्टर तरह से थे। तो मतलब अभी जितना भी सोच ले, वो अभी जो सिस्टर ने कहा कि मतलब हम नहीं उनका नक्शा अपने जेहन में बना सकते, तो मतलब हमें अल्लाह ताला पहुंचा दे। आमीन। और सरदार जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने पढ़ा कि आप ने सुर्ख सूट पहना हुआ था, तो मतलब आदमी को जैसे ये मैंने सुना ही है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सुनी सुनाई बात पे आप कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि मतलब आदमी को सिर्फ पैंट नहीं पहनना चाहिए, तो क्या ये ठीक बात है?
जी, आप देखिए कि कोई भी रंग, सिर्फ जर्द रंग जिसको ज़ाफ़रान में रंगा हुआ अरब लोग कहते थे, वो नहीं पहन सकते। तो मुराद ये है कि जैसे धारीदार है कपड़े में, कभी कोई प्रिंट होता है, आप सब इसको ऐसे ना सोचिए ना कि जैसे आज की दुनिया में मर्दों के स्पेसिफिक कलर्स हैं, बेसिक्स कलर हैं, जैसे वाइट है, ग्रे है स्किन, तो कबाहत नहीं है कोई भी उसमें पहनने में। आप अगर अफ्रीकी लोगों को देखें तो उन्होंने बिल्कुल ख्वातीन वाले ही प्रिंट्स पहने होते हैं। तो इस्लाम कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाता कि कोई उसको बर्दाश्त ना कर सके, यानी बेचारा गुनाहगार हो जाए लेकिन उसको वो करना ही ना पड़े। कोई मिले ही ना अगर कपड़े का, कोई और रंग का, तो क्या करेंगे। हाँ, एक तहजीब होती है, एक मरवत है, एक कल्चर होता है, एक मारूफ बात है किसी सोसाइटी की, उसको सामने रखना चाहिए। हमारे कल्चर में अगर कोई मर्द पूरा सुर्ख सूट पहन आता है तो हो सकता है अजीब लगे, लेकिन यह है कि किसी चीज़ का अजीब लगना या किसी का जायज़ नाजायज़ होना, ये फ़र्क चीज़ है। ए जी, शेयर कीजिए आप। जी शाहीन,
जी
जी शाहीन, आप भी लीजिए माइक।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु उस्ताद
कहते
जी। जी हमने आपने कैसा जुमला बोला, मेरा दिल दहल के रह गया ना, कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, मगर ये ना कि हम आखिरत में भी महरूम रह जाए ना, बहुत दुआओं की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, अल्लाह ताला हमें ऐसे महरूम ना करे। अल्लाह, हाँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं और कभी इस तरफ ज़हन गया नहीं कि हमें किस कदर जो है ना, हम बस ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं ना, तो हमें इसमें अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाना होगा, हमें सिर्फ बातों से या खुशफहमियों से काम नहीं चलेगा ना। तो पर ये मेरे दिल को ऐसे ना बहुत रोती रही हूँ मैं उस टाइम बैठ के, कि ये ना हो कि आखिरत में हम महरूम रह जाए ना,
जी
तो
बिल्कुल,
अल्लाह पाक
हमें
ऐसे
अपना
अल्लाह
हर अमल दुनिया में सुन्नत से ऐसे मैच करना चाहिए कि जैसे कि आप कह लीजिए कि कपड़े को आप मैच करते हैं, और एक एक चीज़ कल हमारी वहाँ इसी तरह देखी जाएगी। और जितना हम सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं, उतना हम जन्नत से दूर होते जा रहे हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं। कहीं कल्चर और कहीं मुल्क और कहीं तहजीब और कहीं फैशन और न जाने क्या कुछ, अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे।
जैसा कि
तो यहाँ पे रुकेंगे इसलिए कि अब आखिरी टॉपिक कल है, इंशाल्लाह ताला उसको लेके चलेंगे। कि आज तो हमने आपका ज़ाहिर देखा, अपीरेंस देखी, आपकी शख्सियत देखी, लेकिन कल हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बारे में कि आपका अख़लाक कैसा था और यानी आपकी आदत कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह अस्माउल हुस्ना की सीरीज़ आपके लिए शुरू करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि इसी तरह 1 घंटा हम यही टाइम लेकर अल्लाह के प्यारे नाम और उसकी सिफात को लेते जाएं। सिर्फ सुनना चाहते हैं या उसको मज़ीद कुछ उस पर और भी करना चाहते हैं, यानी बस आपको ऐसे ही बुला लें सुनने के लिए, या आपको फिर उसमें कुछ मज़ीद भी हेल्प करें? मसलन अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट बनते हैं तो फिर आपको उसके क्विज़ दिए जाएं, या आपको उसके ऊपर मज़ीद, यानी ज़ाहिर है कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना। फिर तो ऐसे ही मैं आपकी फ़ीलिंग्स लेना चाहती हूँ कि रात अक्सर रात ही होती है, तो बस सुन के सो जाएं तो बेहतर है ना कि उस पर अमल करते रहें, और उसका कोई हम रजिस्ट्रेशन लिंक ना बनाएं। और स्पेशली फिर जूम का रूम तो तभी खुलता है जब कुछ लोग कमिटेड होते हैं। तो आप सब अपनी राय दे सकते हैं कि आप जूम पे इस तरह इंटरेक्टिव होना चाहते हैं या बस उसको हम यूट्यूब और फेसबुक पे ले लें, लेना चाहते हैं जूम पे इंटरेक्टिव है, और बस सुन के छोड़ दें या फिर बाद में कुछ पूछें भी आपसे? चलिए सोच के जवाब दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से हम शुरू तो कर ही रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो मंडे से, लेकिन यह कि किस टाइप पे करना चाहते हैं। जो लोग एक्चुअली आके बैठे होते हैं, मुझे लगता है उनकी राय सबसे अहम होती है, कि आपको मुश्किल ना लगे और आप इसको इंजॉय भी करें और फिर फ़ायदा भी हो। मैं तो सोच रही थी कि कुछ लोगों को ज़रूर मौका देते हैं, अगर वो एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट आते हैं तो बाद में फिर उनसे कुछ क्विज लेकर और कुछ उनसे मज़ीद हेल्प करके उनको इस पे सर्टिफाइड कर दिया जाए। तो बहरहाल आप लोग अपनी जो भी चाहें, जिस जो भी आपका इस मीडियम है, आप उसके थ्रू अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। जज़ाकमल्ला खैर जी सिस्टर फहमीदा, आप माइक ले लीजिए, अभी 2 मिनट हैं वैसे हमारे पास। जी इनको अनम्यूट कीजिए। स्पेशली ये जो छोटे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आप सबीलुल जन्ना और दूसरे बड़े कोर्सेज हैं जिसमें लाइबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, तर्जुमा याद करना, टेस्ट, असाइनमेंट, लेकिन ये जो शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं और शॉर्ट टर्म से थोड़ा टाइम, इसमें आप अपने नए साथियों को बुलाया करें। मतलब अब इस वक्त भी मुझे आप में से बहुत सारे लोग पेरिस क्लास के दिख रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आप 2-3 कोर्सेज़ में ऑलरेडी हैं। आपके लिए ये जो नए कोर्सेज़ हैं, जैसे अब इंशाल्लाह आपको फ्लायर मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है आज या कल में, तो उसमें आप फिर वो दूसरे अपने उन दोस्तों को शेयर करें और उनको हेड स्टार्ट दें कि चलिए आप सबीलुल जन्ना नहीं कर पा रहे, आप ये कर लीजिए, आइए इसमें आए, यदि उनको एक कदम देने के लिए आगे गो हेड सा। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें बाज़ दफ़ा फिर बहुत बड़े रास्ते खोल देती हैं। ठीक है, जज़ाकमुल्लाह खैर। ठीक है जी, अब वक्त पूरा हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा वासनुल जज़ा सर जी, माशाल्लाह ला कुव्वत अल्ला बिल्ला, बहुत ही बेहतरीन सेशन था आज। ऐसा लग रहा था जैसे जितना हमने सीखा उसका एक निचोड़, और सबसे बेहतरीन चीज़ कि आप सब के अखलाक अपनाने हैं, इंशाल्लाह आपके औसाफ अपनाने हैं। शक्ल सूरत तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है वही है, वही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम दीन की मुनासबत से, दीन की वजह से लोगों में मशहूर होते जा रहे हैं, या दीन हमारी पहचान बनती जा रही है, तो फिर हमें यही चीज़ अपनानी है और ये दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी वजह से दीन की इज्जत हो। ये एक बहुत खूबसूरत बात थी, क्योंकि देखिए कि हमने सिर्फ आप के हाल हुलिया में आपका इखलाक कितना ज़्यादा देखा है, कि सखी थे, जुरतमंद थे, सादिक लहजा था आपका, अहद पैमान के पाबंद थे, नरम तबीयत थे, शरीफ साथी थे, और आप में एक हैबत भी थी, रौब था, अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको एक वकार दिया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला बेसिकली आप के उस पर हंसना को और आपके अखलाक को अपनाने के हमें तौफीक अता फरमाए सराजी। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा वासिनुल जजा। आप लोग फीडबैक दीजिएगा अस्माउल हुस्ना का, सराजी ने जैसे बात की है मैं वेट करूंगी और मैं भी दूंगी इंशाल्लाह। आप लोग भी दीजिएगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक्टिविटीज के तौर पे भी हो सकता है, कोई इसके तौर पे भी हो सकता है, कुछ और भी अगर किसी के जेब में आइडिया है तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। जजाकुमुल्लाह खैर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।